हे विभो परिविष्टया वनमालया परियुषित वनमाला से के साथ प्रतिपत्नीवत यम भगवती श्री शौक की तरह यह सुप्रसिद्ध आपके वक्षस्थल पर निवास करने वाली भगवती श्री संस्पर्धिनी हैं, ऐसा हम अनुमान करते हैं। अहम जत्र वसामि तत्रैव वक्षसि परियुषिता अपि यम वसति इति प्रतिपत्नीवत सपत्नी श्री संस्पर्धमाना भवति। तथापि ताम संस्पर्धमानं श्रियं अनादृत्य यः भवान् परियुषितयापि अमुया वनमालया भक्तैः अर्पिता इयमिति प्रीत्या सुप्रणीतम् अर्हम् आददत्। तस्य तवाङ्घ्रि नः अशुभाशय धूमकेतुः सदा भूय। ऐसे भगवान के गले में लटकी हुई वनमाला दिव्य है, अतः कभी भी परियुषित नहीं होती है, परंतु भक्तजन बारंबार नवीन माला धारण कराते हैं भगवान को, यह भावना करके परियुषिता शब्द कहा गया। परियुषित परियुषित का अर्थ है वासी। हे विभो भक्तों के द्वारा अर्पित से वनमाला से लक्ष्मी जी मानो ईर्ष्या से करती हैं, फिर भी आप श्री का अनादर करके संस्पर्धवानम श्रीयम अनादृत्य अमुया वनमालया सुप्रणीतम अर्हणम आदर। भक्तों के द्वारा वनमाला द्वारा, इस वनमाला द्वारा जो सुष्ठु संपादित अर्हणम है, आपकी आराधना है, पूजा है, उसी को स्वीकार करते हैं। लक्ष्मी जी जले या मरे कभी भी आप वनमाला नहीं निकालते हैं, यह अर्थ। तो लक्ष्मी जी कभी ईर्ष्या नहीं करते, उनके श्रृंगार से वे और अधिक प्रसन्न होती हैं, परंतु श्रीपाद जी गोस्वामी जी कहते हैं कि सब प्रणय विनोदोक्ति मात्र विदम, यहाँ केवल प्रेम सहित विनोदोक्ति मात्र है। और यह सिद्धांत है कि भगवान अपने भक्तों की पूजा को बहुत बड़ा करके मानते हैं। जब भक्तजन भगवान की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उनके सामने यह विचार जरूर आ जाता है कि एक तरफ तो मैं दीनहीन व्यक्ति हूं और दूसरी तरफ सर्व सौभाग्य सर्व धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी हैं, तो भगवान हमारी सेवा को क्या पूछेंगे। प्रभु महाराज के मन में भी इस प्रकार के भाव का उदय हुआ, उनकी स्तुति में वर्णन है। उस समय भगवान से कहते हैं कि यदि कदापि हम में और लक्ष्मी में प्रतिस्पर्धा हो जाए आपकी चरण सेवा करने में, तो आप हमारा ही पक्ष लेंगे, क्योंकि भगवान को वास्तव में भूरितर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है, भाव की अपेक्षा करते हैं। तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी और भक्त में यदि सेवा के लिए स्पर्धा हो जाए, कंपटीशन हो जाए, तो भक्त की सेवा को ही भगवान स्वीकार करते हैं, न कि अधिक धनवान होने से लक्ष्मी जी की सेवा को स्वीकार करते। किसी भी व्यक्ति को ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं धनी हूं इसलिए भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे, और कोई निर्धन है तो उसकी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान प्रेम के भूखे हैं, और इतना यह भी निश्चित है कि वे दीन बंधु हैं, दीनों का पक्ष लेते हैं। जब संधि दूत बनकर गए हस्तिनापुर, वे एक राजा के द्वारा अर्पित की गई सेवा को स्वीकार नहीं की। दुर्योधन ने बहुत तरह से भगवान की सेवा करने का विचार किया था, लेकिन भगवान स्वीकार नहीं किए। और विदुर जी के यहां जाकर साग खाए, केला का छिलका खाए, यह भगवान का स्वभाव है। ऐसी बात नहीं कि भगवान के पास कुछ कमी है और इसलिए किसी धनी की अपेक्षा करेंगे। सबसे धनी व्यक्ति भगवान की सेवा में है, लक्ष्मी। इस संसार में ब्रह्मा आदि के पास जो धन है वह लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष का फल है। थोड़ी सी कृपा की कोर से देख देती हूँ तो वही व्यक्ति इस लोक में परम धनी हो जाता है। वह भगवान की नित्य सेविका है। तो उपेक्षा की जा रही है कि लक्ष्मी जी भले संस्पर्धा करे उस वनमाला से, लेकिन वह वनमाला भक्तों के द्वारा अर्पित की गई है। अतः अमुया वनमाला, उस वनमाला के द्वारा संपादित, सुष्ठु संपादित सेवा को भगवान आदर स्वीकार करते। कभी यह समझ करके छोड़ते नहीं है कि अरे इसमें क्या है। तो ऐसे प्रभु का चरण कमल तस्य तवांग्री न सदा अशुभाशय धूम केतु भूयात्। आपका चरण कमल हमारी अशुभ वासनाओं को सदा ही जलावे, समाप्त कर। या धूम केतु शब्द पर कुछ विचार करना चाहिए। हमारी अशुभ वासनाओं को जलाने के लिए आपका चरण कमल अग्नि बने, भूया हो। अग्नि किस तरह से जलाता है इसको हम लोग लोक में देखते हैं। ईंधनों को, सूखे या हरे ईंधनों को भी अग्नि जलाने लगता है। इसका अर्थ है कि घोर जंगल की तरह, कूड़ा करकट की तरह हमारे हृदय में वासनाएं छाई हुई है, यह छा सकती है। इस प्राकृत जगत में कभी भी किसी के भी मन में संसार के भोगने की इच्छा का उदय हो सकता है। यह आनंद इच्छाएं रहती ही है, सबका अनुभव है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा शिव देवगण कि हमारे अशुभ वासनाओं को आपका चरण कमल जला दे, मतलब आप जला दीजिए। यह बात है कि मान लीजिए अग्नि किसी ईंधन को या कूड़ा करकट को, कुछ अंबार को जला दिया। जलाने का लाभ, जलाने का लाभ तो है कि अग्नि भी शांत हो जाए और वो स्थान साफ हो जाए कि वहां खेती करे, कुछ भी घर मकान बनाए, कुछ भी करे, यहाँ फालतू चीजें जमा हुई है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर दृष्टांत और दृष्टांत में केवल एक बात के लिए उक्ति कही गई है कि वह जला दे। लेकिन जला करके क्या करे, वह स्वयं ही हमारे हृदय में उदित रहे। जहां तक माया की बात है, माया को दूर करने में भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है। यदि माया अंधकार है तो वे सूर्य के समान है। कृष्ण सूर्य सम माया है, अंधकार जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो भगवान का यह स्वभाव है कि वे जिस हृदय में उदित होते हैं वहां की अन्य वासनाओं को निश्चित दूर कर देते हैं। इसलिए अगले श्लोक में आगे कहा गया सम नस्तनोतु, हमारे हृदय में सम का विस्तार करें, मतलब सम स्वरूप, कल्याण स्वरूप, सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में उदित रहे, जिससे कि अन्य वासनाएं आवे ही नहीं। तो दो प्रकार के भक्तों के लिए प्रार्थना, एक तो पहले से जिनके हृदय में वासनाएं हैं उनको आप जला दें, और दूसरी बात यह है कि आप हमारे हृदय में सदा उदित रहें, जिससे कि एक तिनका मात्र भी वासना हमारे हृदय में न आने पाए। जहां प्रचंड अग्नि जलती रहती है, आग जलती रहती है, वहां पर कोई भी खरपात आते ही दूर से ही जल जाएगा, वो ठहर नहीं सकता। तो आगे कोई वासना न उठने पावे, इसलिए आप हमारे हृदय में उदित रहिए सदा। और विशेष करके आपकी यह सुंदर आकृति वनमाला से युक्त इस वनमाला को देख कर हमें इस बात का स्मरण होता है कि आप भक्तों से बहुत अधिक स्नेह करते हैं। यही कारण है कि उन दीनहीन भक्तों के द्वारा अर्पित की हुई सेवा को भी आप इतना बड़ा करके उसे धारण किए रहते हैं। तो आपका यह स्वभाव और आपका यह रूप हमारे हृदय में सदा उदित रहे, जिससे हमारे भीतर आपके अतिरिक्त तो अन्य कामना न होने पावे। भगवान जहां भी जाते हैं वनमाला धारण किए हुए, तो उस वनमाला को देखकर भक्तजन यह जरूर ध्यान करते हैं कि किसी न किसी अति धन्य भक्त ने यह वनमाला अर्पित की होगी। भगवान उसे धारण करके लोक को यह शिक्षा भी देते हैं कि देखो भक्त के द्वारा अर्पित पूजा को मैं स्वीकार करता हूं, प्रेम से धारण करता हूं। और वैसे त्वचरणस्य भक्त पक्षपातः प्रसिद्ध है रहती स्तुवंतः प्रार्थयन्ति। अगले श्लोक में कह रहे हैं देवघर की भक्त का पक्ष करना आपके स्वभाव में यह प्रसिद्ध बात है। त्वचरण से भक्त पक्ष पाकर प्रसिद्ध है। केतुस्त्रिविक्रम युतस्त्रिपत पताको जस्ते भया भय करो सुरदेव सम्मुह स्वर्गाय साधु सुखले स्वितराय भूमन पादः पुनात भगवन् भजताम धम्मः। यह त्रिविक्रम युत जो चरण कमल त्रिविक्रम से युक्त है, बलि बंधने त्रिभिर विक्रम है युक्त। बलि महाराज को बांधते समय, बलि महाराज को बांधने के प्रसंग में भगवान ने तीन पग बढ़ाया था, सुप्रसिद्ध पग, इसीलिए भगवान के चरण कमल के लिए यह प्रयुक्त त्रिविक्रम जूता। विक्रम मतलब पदन्यास, पदन्यास जूता है युक्त, जो तीन है पदन्यास से युक्त है। तो क्या भगवान केवल तीन ही पग चले हैं आज तक? ये तो बहुत बहुत चले हैं, लेकिन एक बार उनका तीन पग बहुत प्रसिद्ध हुआ था, त्रिविक्रम उसी समय से नाम हुआ भगवान। त्रिविक्रम कहिया त्रिविक्रम जूता ते पादः आपका चरण तत्र द्वितीय विक्रमे सत्यलोकम गतः। तो भगवान का एक चरण नीचे गया, दूसरा चरण ऊपर गया और तीसरा चरण बलि महाराज की मस्तक पर, ये त्रिविक्रम। तो तत्र द्वितीय विक्रमे सत्यलोकम गतः तव पादः केतु, तो जो सत्यलोक में गया आपका चरण, वह तव पादः केतु अति उच्छित विजय ध्वज, वह केतु है। केतु का अर्थ होता है ध्वज, झंडा। अति उच्च झंडा को केतु कहते हैं। अति उच्छित विजय ध्वज आएगा, और यहां केतु का अर्थ है दंड मात्र, और उससे जो गंगा जी निकले वही है उस दंड में पताका, पताका जो वस्त्र लहराता रहता है, जैसे बहुत बड़ा वस्त्र हम लोग देखते हैं द्वारकानाथ, द्वारका दृष्टि मंदिर पर द्वारका में, और वहां पर झंडा चढ़ाने की बहुत महिमा है, बहुत खर्च होता है, लोग नया नया झंडा चढ़ाते हैं। तो आपका जो द्वितीय चरण सतलोक में गया है वह केतु के समान है, अति उच्छ्रित त्रिपतक पता कह, और उसमें से त्रिधा पतंती लोकेश हुआ पतंती गंगा पताका जस्य, तो उसमें से तीन प्रकार से झंडा फहरा रही है। मतलब गंगा जी जो तीनों लोकों में बहती है, वहीं से निकली गंगा जी, इसलिए पहले भगवान के चरण के रूप में पताका से केतु से दे रहे हैं और वहां से फहरा रही है लंबी लंबी जो कपड़े फहराते हैं वो त्रिधा त्रिपतत पताका। त्रिपतत का तो तीनों लोकों में जो गिरती है फहराती है, तो झंडा जब लहराता है तो लगता है कि जा जाकर अंतिम छोर गिर रहा है। तो तीनों लोकों में गंगा जी की तीन धाराएं गिरती हैं, यही पताकाएं हैं। एक तो ये है और दूसरी भयाभय करह, भगवान का चरण कमल भय करता है, भय देता है और अभय देता है। किसको आगे कर रहे, असुर देव चमु, असुरों की चमु को सेना को भय देता है और देवताओं की सेना को अभय देता है। वह आप सर्वदा देवताओं का पक्ष करते हैं, असुरों का वध करते हैं। तो असुर देव चमु तत् सेना उभयो भयाभय कर, साधुसु सुरेशु स्वर्गाय, आप साधुओं में स्वर्ग की प्रतिष्ठा करते हैं, मतलब स्वर्ग देते हैं सज्जनों को, स्वर्ग देते हैं मतलब देवताओं को स्वर्ग में प्रतिष्ठित करते हैं। और खलेशु इतराय, और असुरों में इतरस में अधोगमनाय नरकादि दुखाय, खलों को नरक आदि दुख देते हैं और साधुओं को स्वर्ग आदि सुख देते हैं। यह एवं केतु रूपहते पादः, केतु रूप आपका चरण कमल भजता न अघम पुनातु शोभयतु हे भूमत। भजन करने वाले हम भक्तों के अघ को अपराध को पुनातु शोभयतु समाप्त करे, हमें पवित्र करे, आपका चरण कमल हमें पवित्र करे। या कोई भी व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, हे नाथ आपसे प्रार्थना है कि आप उसको शुद्ध करें, शोधित करें। भगवत भक्ति करने वाले भक्त का पूर्ण दायित्व तो भगवान पर होता है, वे शुद्ध करते हैं। चैतन्य चैतावत में भगवान ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मेरा भजन करता है और विषय सुख मांगता है तो मैं वह विष उसे नहीं देता, क्योंकि संसार में जो विषय सुख है वो विष है, तो मैं उसे विष नहीं देता हूं बल्कि अपना चरण कमल देता हूं। यह भगवान का स्वभाव, परंतु फिर भी भगवान को भगवान के स्वभाव की याद दिलाई जाती है। अतः हम भजन करने वाले भक्ति करने वाले भक्तों का अघ है आपका चरण कमल दूर करे, अघम पुनाति मतलब पाप ताप समाप्त करके शोधयत शुद्ध कर। इस प्रकार से भगवान के अनेक गुणों का वर्णन इस श्लोक में है। भगवान असुरों के लिए भयावह हैं, देवताओं के लिए बड़े सुखद हैं, सज्जनों को ऊपर का लोक देते हैं, स्वर्ग देते हैं, वैकुंठ देते हैं, और खलों को अधोगति में डालते हैं, नरक आदि में डालते हैं। और तीन विक्रम से युक्त हैं भगवान, और गंगा जी उनकी कीर्ति को तीनों लोक में फैलाती रहती हैं, तीनों जगत को पवित्र करती हैं। ऐसा जिन चरणों का स्वभाव है वे चरण हमारे पाप को दूर करते हैं। पाप का यह अर्थ हमेशा लेना चाहिए अशुभ वासना, भगवत भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामना। ननु युद्धे देवासुरादय परस्परम जयंती जियंते च किमहं तत्र इत्यतः। यदि भगवान यह कहें देवताओं से कि देवता और असुर में जब युद्ध होता है तो परस्पर में कोई जीतता है कोई जीता जाता है हारता है, मैं वहां क्या करता हूं, इसी का उत्तर दे रहे हैं। नस्योत गावैवजस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरार्द्यमानः
कालस्य ते प्रकृति पुरुषयोः परस्य शम्नास्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य।
मिथुः अर्घ्यमानः ब्रह्मादयः तनुभृतः जस्य वशे भवन्ति। मिथुः का अर्थ होता है मिथ, परस्पर। इस संसार में अर्ध्यमानः परस्पर युद्धादि के द्वारा जीव पीड़ित होते हैं, और सबसे बड़े कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्माद्य, ब्रह्मा आदिर जेशन ते ब्रह्मादय। ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत सभी जीव यहां इस जगत में परस्पर एक दूसरे को दुख देते हैं। तो मिथुः अर्घ्यमानः, झगड़ा सब जगह होता है। पक्षियों में युद्ध आपने देखा है ना, गौरैया गौरैया आपस में लड़ जाते हैं खोता लगाने के लिए। इसको हमने देखा है, पक्षियों में युद्ध है, कीट पतंग में युद्ध है, एक चींटी भी दबती है तो मनुष्य तक को काटना चालू कर सकती है, काटती है। तो इस संसार में एक जीव दूसरे जीव को जितना सुख दे रहा है उससे अधिक मात्रा में दुख दे रहा है परस्पर। इसलिए मिथुः अर्घ्यमानः यहां कहा जा रहा है। इस प्राकृत जगत में प्रायः ब्रह्मा आदि सभी जीव एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, अर्घ्यमानः। समस्त शरीरधारी, यह तनुभृत का अर्थ ही है अपने स्वरूप से च्युत, अपने स्वरूप को भूले हुए और देह को मैं माने हुए। तनुभृत बहुवचन में जितने तनुधारी हैं, शरीर धारण करने वाले आत्मा मतलब मायाबद्ध जीवगण, जिनमें ब्रह्मा जी सबसे प्रधान है, ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत समस्त जीव एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। परंतु ये सभी जस वशे भवन्ति, आपके वश में है। किस तरह, कैसे वश में है? नसी ओता गावह इव, नसी माने नासिकायं, नाक में ओता आविध्य बद्धा गावह बलिबर्दा इव। जैसे बैलों को वश में रखा जाता है, किसान लोग वश में रखते हैं, उनके नाक में छेद करके और नाथ पहना करके और अपने बस में रखते हैं, गाड़ी में जोतते हैं, हल में जोतते हैं, कोल्हू में चलाते हैं, बैल से सेवा लेते हैं ना। अपनी इच्छा करती है कि चलो कुदरा चलना है, तो बैल को चलना है, नहीं चलने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि नाक में नाथ है, रस्सी पड़ी हुई है। तो ब्रह्मा से लेकर के और कीट पर्यंत जितने भी जीव हैं, जस्य वशे भवन्ति, भगवान विष्णु के वश में है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भीत जारे जैसे नचाए से तैसे करे नृत्य, भगवान सबको नचाते हैं। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी ही बोल रहे हैं कि ब्रह्मा दयस तनुभृतो जस्य वशे भवन्ति, उनके वश में है। कैसे? नसी ओता गावह, ये गावह बहुवचन में है, इसका अर्थ है बैल बलिवर्दा। कुतः, कैसे, क्यों वश में है आपके? क्योंकि कालस्य कलयितु प्रवर्तकस्य, आप कलयिता है, काल है। काल का अर्थ होता है हांकने वाला, गिनने वाला, सबको बस में रखने वाले को काल कहते हैं। एक एक करके हिसाब किताब क्लियर करता जाए, गिनता जाए, मारता जाए, इसको काल कहते हैं। तो आप काल हैं, यह कैसे? क्योंकि प्रकृति पुरुषयो परस्य, आप प्रकृति और पुरुष से भी पर हैं, इसलिए आप पुरुषोत्तम हैं। प्रकृति कहते हैं माया को और पुरुष मतलब जीव, प्रकृति और पुरुष दोनों से आप पर है, अथवा प्रकृति और कारणदक्षाई दोनों से आप पर है, आप पुरुषोत्तम है। ऐसे पुरुषोत्तम के चरण न संतनम तु, हमारे सम का विस्तार करें, हमारे मंगल का विस्तार करें, हमारे हृदय में जो भी भगवद रति के अतिरिक्त कामना हो उसको समाप्त करो। कामना समाप्त करके और सम का अर्थ प्रीति की सुरक्षा करो, भगवान का प्रेम हमारे हृदय में बना, आपका प्रेम बना रहे। हे पुरुषोत्तम, आपका चरण हमारे हृदय से अशुभ वासनाएं दूर करे, पहली प्रार्थना है, और आपका प्रेम रूप मंगल हमारे हृदय में विस्तारित हो, ऐसा आप ही कर सकते हैं। वास्तव में भगवान चाहे तो अपना प्रेम हृदय में एक क्षण भर सकते हैं, सबके हृदय में। तो जो इस प्रकार से समस्त जीवों को अपने बस में रख सकता है, सबका जन्म मरण खाना पीना उठना बैठना सब जिसके बस में है, तो किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम भर देना भी उसी के बस में है। अपने प्रति प्रेम देना यह भगवान के हाथ में है, भगवान ही प्रेम देते हैं। जैसे जीव साधन करता है भगवत प्रेम पाने के लिए, लेकिन भगवान का प्रेम भगवान ही देते हैं स्वयं, उसके लिए दाता है। जैसे प्रथम स्कंद के छठे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, नारद मुनि जब पूर्व शरीर में बच्चा थे भजन किए, तो भगवान उनके हृदय में एक बार आविर्भूत हुए और आविर्भूत होकर के फिर द्रोहित हो गए। अब वह बच्चा भगवान को देखने के लिए पुनः अपने मन को समाहित किया, बैठा, ध्यान लगाने की कोशिश किया, लेकिन ठीक वो रूप मन में आया नहीं, विकल हो गया उस वन में। तो भगवान ने कहा आकाशवाणी में कि हे वत्स, तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। उस बच्चे ने पूछा तो क्यों दर्शन दिए, तो भगवान ने ये कहा कि तुम्हारी चित्तवृत्ति पूर्णतः अनन्य होकर के मुझ में ही लगी रहे, तुम मेरे लिए विकल रहो, इसके लिए मैंने अपने रूप की स्फूर्णा कराई, तुम्हारे हृदय में प्रकट हुआ, जिससे तुम्हारा चित्त इधर उधर ना जाने पावे, मुझ में ही लगा रहे, तुम इसके लिए विकल रहो। तो इससे स्पष्ट सिद्ध है कि भगवान है, चाहे तो एक क्षण में आविर्भूत होकर हृदय में प्रेम दे सकते हैं, हमारी इंद्रियों के वेग को अपनी ओर लगा सकते हैं। कुछ लोग ये कहा करते हैं कि भगवान का प्रेम भगवान कैसे दे सकते, वास्तव में भगवान का प्रेम जो कुछ भी है सब भगवान में है, उनके साथ भक्त आदि सब उनके अधीन, और जो भी उचित विधि है प्रेम उत्पन्न करने की वो भगवान के हाथ में है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, जीव का स्वरूप है भगवान से प्रार्थना करना मांगना। हमारे भीतर जो विचार उठ रहे हैं एकांत में भी, तो हम चाहें तो उन विचारों को भगवान के साथ प्रस्तुत कर सकते, भगवान से कह सकते हैं हमारी ये इच्छा है, हमारी ये स्थिति है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर देवगण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारा अशुभ दूर कीजिए, अशुभ वासनाएं हमारी दूर कीजिए, और हमारे हृदय में अपना प्रेम रूप मंगल विस्तारित कीजिए, क्योंकि आप सर्व समर्थ हैं। और वैसे भी आप काल रूप से हैं, उसी उक्ति को पूरा करने के लिए पुनः कह रहे हैं। प्रकृति पुरुषाभ्याम परत्वम उत्पादयंत कालत्वेन पुरुषोत्तमत्वम आहुजस्य। प्रकृति और पुरुष से भगवान परे हैं इसको कहते हुए, और काल रूप से भगवान पुरुषोत्तम हैं यह कह रहे हैं। पुरुष का अर्थ होता है स्वामी मालिक, तो वास्तव में काल ही इस जगत का स्वामी है, काल के अधीन यह जगत है, अतः कालत्वेन पुरुषोत्तमत्व आहु, काल रूप से भगवान की पुरुषोत्तमत्ता का वर्णन कर रहे। अस्यासि हेतुरुदय स्थिति संयमानाम् अव्यक्त जीव महतामपि कालमाहुः सोयम् तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीर रय उत्तम पुरुषस्त्वम्। अस्य जगतः उदय स्थित संयमानम हेतु असि, हे नाथ, अस्य जगत, इस जगत के समस्त जीवों के उदय स्थिति और संयम के आप हेतु कारण। तो काल इस जगत का हेतु है, जन्म का, स्थिति का और संयम का। तो अस्य जगत उदय स्थिति संयमानम हेतु असि, कुतः, कैसे, क्योंकि अव्यक्त जीव महतान अपि कालम त्वाम, क्योंकि अव्यक्त जीव महतान अपि कालम त्वाम आहु। अव्यक्तम प्रकृति, जीव पुरुषो, महान महत्व देशा। तो आप प्रकृति और जीव समुदाय तथा प्रकृति और जीव समुदाय से मिले हुए महत्त्व के भी काल हैं, नियंता हैं, ऐसा विद्वान लोग कहा करते हैं। आपको कालम आह, काल का अर्थ होता है नियंता, कंट्रोलर। प्रकृति, जीव और महत्त्व तीनों के आप ही नियंता हैं। इस नियंता और अभियंता शब्द को आजकल सरकारी डिपार्टमेंट में भी लिखा जाता है। अभियंता का क्या मतलब होता है? इंजीनियर, चालू करने वाला, फोर्स देने वाला। नियंता भी कहीं कहीं लिखते हैं ऐसे परीक्षा नियंता। तो शास्त्र और सज्जन कहते हैं कि आप इस माया शक्ति के, समस्त जीवों के और माया शक्ति और जीवों से मिले हुए महत्त्व के क्रियाकलाप के आप ही नियंता कहते। कालम आ अक्षरा परतः परह महतः परम व्यक्त मध्यक्ता पुरुष परह पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति इत्यादि सूत। श्रुति में कहा गया है अक्षरात परतः पर महतः परम अव्यक्तम अव्यक्त अव्यक्ता पुरुषः परः पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। अयम संवत्सरात्मक यह काल है, यह जो प्रसिद्ध काल है, एक तो काल भगवान है, दूसरा यह प्रसिद्ध काल जो है, प्रसिद्ध का मतलब हम लोगों के अनुभव का विषय। अयम का अर्थ यह, ऐसे काल की गणना पक्ष में की जाती है, सप्ताह में या महीने में, छह महीने में, लेकिन वास्तविक गणना सुप्रसिद्ध है वर्ष काल। काल की यह गणना है इकाई वर्ष। किसने पूछा जाता है कि आप कितने वर्ष के हैं, कितना वर्ष हुआ यह घटना, यही पूछा जाता है ना। हम लोगों की आयु को कोई पूछता है तो वर्ष में पूछता है, नहीं पूछता है कितना दिन हुआ, सब जोड़ जाकर बताएं तो कितना महीना हुआ। वर्ष बहुत प्रसिद्ध है और उसको संवत्सर कहते हैं। तो इयम काल से संवत्सरात्मक यह काल है। संवत्सरात्मक मतलब वर्षात्मक जो काल है, एक वर्ष का जो काल है, समय है, वह उसकी तीन नाभि है। चक्र के रूप में वर्णन कर रहे हैं, इसमें त्रिणी चतुर्माश्यानी नाभ्योजस्य, तीन नाभियां, तीन चार चार महीने की तीन नाभियां हैं, चार चतुर्माश्य कहते हैं, तीन चतुर्माश्य होते हैं एक वर्ष। वर्षा के चार महीने, जाड़ा के चार महीने और गर्मी के चार महीने होते हैं ना। इस साल जाड़ा के चार महीने ज्यादा हो गए, क्या अधिक ठंडा पड़ गया, वर्षा हो गई, लेकिन जब गर्मी का मौसम आएगा तो आप लोगों को लगेगा कहीं यही तो ज्यादा नहीं हो रहा है, वर्षा भले कम हो रही है, छह ऋतुए हैं निकली है चातुर्मास से आवरण के लिए, तीन चातुर्मास से है, तीन चौक 12 महीने। यह अयम यह काल त्रिनाभि त्रिनाभि सह अपि त्वमेव अभी आप ही हैं, अतः त्वम उत्तम पुरुष है, आप उत्तम पुरुष हैं, उत्तम अभियंता है, नियामक। कथम भूत काल गभीर रय, कैसा काल गभीर रय, गभीर का अर्थ अप्रतिहत वेग वाला, कोई यह सोचे कि ये जो वर्ष चल रहा है इसको यही रोक दिया जाए, अब 99 न आने पाए, 98 के चक्का को यही जाम कर दिया जाए रेलवे में हड़ताल करते हैं तो लोग कहते हैं चक्का जाम हो गया, लेकिन जाम होता नहीं, चलता रहे, काल एक चक्र है, चल रहा है, वर्षा का मौसम बीतेगा तो आएगा जाड़े का मौसम, जाड़े का मौसम बीतेगा तो गर्मी का मौसम आएगा। कोई व्यक्ति सोचे जोर लगा कर कि बस अब गर्मी का ही मौसम बना रहे, अब रोक दे चक्का, नहीं रुकेगा, इसको गंभीर रायक रायक अर्थ वेग, इसके वेग को रोकना बड़ा कठिन, काल चक्र को रोकने के लिए भगवान ने कोई भी ब्रेक नहीं बनाया, लग जाए ब्रेक और एकाएक सबकी आयु बीतना बंद हो जाए और सब बंद हो जाए, नहीं, काल चल रहा है प्रति क्षण, घड़ी के सेकंड सुई की तरह खच 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 बहुत रफ्तार से चल रहा है, गंभीर रय कहते हैं। अखिल अपचय प्रवृत्त, और अखिला नाम अपचय नाशे प्रवृत्त, समस्त उत्पन्न की हुई वस्तुओं के नाश में यह काल प्रवृत्त है। उपचय और अपचय दो शब्द हैं, तो उपचय का अर्थ होता है उत्पन्न करना बढ़ाना, और अपचय का अर्थ है विनाश करना, काल रूप से आप सबके विनाश पर पड़े हुए हैं, जैसा गीता में कहे हैं जस्मा अक्षर अतीतो हम अक्षराद पिचुक्तम अतोस्मी लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम है, जितने भी स्वामी हैं मालिक हैं सब में सिरमौर परम ईश्वर भगवान कृष्ण है, वही काल रूप से है। त्वमेव प्रकृत्यादि द्वारा जगत सृष्टियादि हेतु रीति उत्तम, तो यहाँ तक यह बात कही गई कि प्रकृति आदि के द्वारा जगत की सृष्टि आदि के कारण आप हैं, तब केन प्रकारेण तदा, किस प्रकार से वे हेतु हैं इसको अब बता रहे हैं। जीवा पुरुषा उत्तम त्वम अव्यक्तम अधुना प्रकृति उत्तमत्व उक्तम, जीव से भगवान परे हैं श्रेष्ठ ये बात कही गई, अधुना प्रकृति दृष्टु पुरुषाद अपितमत्व्यंजन, चक्रवर्ती पाद जी कहते अब यह बता रहे हैं कि भगवान किस तरह प्रकृति से और पुरुष से कारणोदक साई से भी परे हैं, इसको बता रहे हैं। त्वत्तः पुमान समधिगम्य जजास वीर्यम धत्ते महांतमिव गर्भ ममोघ वीर्यः सोयम तयानुगतयात्मनयाण्डकोशम हैमं ससर्ज बहिरावरणैर्पीतम् त्वत्तः सकाशः पुमान आदिपुरुषः महत्स्रष्टा समधिगम्य शक्तिं प्राप्य जया माया द्वारा वीर्यं महान्तं धत्ते। बिल्कुल अर्थ स्पष्ट है, तीन पुरुष हैं प्रसिद्ध, कर्णोदकशाही पुरुष, गर्भोदकशाही पुरुष और क्षीरोदकशाही पुरुष, तो प्रथम पुरुष के लिए महत्स्रष्टा जिनको कहते हैं प्रकृत्यंतर्यामी, तो वे उनको पुमान पुरुष कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध शब्द है शास्त्र में, पुमान या पुरुष मतलब कर्णोदकशाही पुरुष। तो त्वत्तः आपसे सकाशात पंचमी विभक्ति में है, आपसे पुमान आदि पुरुष कारणोदक साई समधिगम्य, सम अधिगम्य खूब अच्छी तरह से प्राप्त करके, क्या शक्ति, आपसे शक्ति प्राप्त करके जया माया वीर्यम महांतम धत्ते, यहाँ जया जिस माया शक्ति द्वारा बीज को धत्ते स्थापित करते हैं, मतलब इसका यहाँ रया शब्द जस्या सप्तमी विभक्ति में लगेगा। आपसे शक्ति प्राप्त करके आदि पुरुष भगवान कारणदक्षाय पुरुष भगवान जिस माया में तो जस्या माया शक्ति में वीर्य रूप महांतम धत्ते वीर्य स्थापित करते हैं। जब प्रकृति में जीव को दिया जाता है, अनंत कोटि जीवों को बीज की तरह जब भगवान छींटते हैं प्रकृति में देते हैं, तो जीवों से युक्त प्रकृति की जो अवस्था है उसको महत्तत्व कहते हैं। और बीज का अर्थ है यहाँ जीव बीज महानतम धक्त। किस प्रकार से अस्य विश्वस्य गर्भम इव स्वयं महानतैव माया अनुगतः सन्। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी में गर्भ स्थापित करता है, उसी प्रकार कारणोदक साय पुरुष इस विश्व के गर्भ की तरह अस्य अविश्वस्य गर्भमिव स्वयं महान अनुगत। स्वयं धत्ते महान गर्भ अमोघ बीज, गर्भमिव अमोघ बीज। जैसे कोई पुरुष अपनी पत्नी में गर्भ स्थापित करता है, इस तरह प्रकृति में भगवान ने गर्भ के रूप में स्थापित किया इस महात्मा को, समस्त जीवों को प्रकृति के भीतर दिया, क्योंकि वे अमोघ बीज, उनका प्राकर्म अमोघ। स्वयं तयानुगत आत्मन अंड कोशम हेमं ससज बहिरावरण रूपे, वही प्रभु कारणोदक साय पुरुष तया अनुगत उस माया के साथ हो करके, अनुगत का अर्थ है उसकी क्रियाओं में साथ दे करके। यदि प्रकृति के भीतर भगवान न रहे तो प्रकृति कोई कार्य नहीं कर सकती है, गर्भाधान करने के बाद भी। ऐसी बात नहीं कि केवल जीवों को दे दिया गया प्रकृति को तो प्रकृति कार्य करने में समर्थ हो जाएगी, नहीं, भगवान का उसके साथ रहना आवश्यक है। इसीलिए वे महान गर्भोदक साय पुरुष तया माया अनुगत सन आत्मन सकाशा अपने से अंडकोशम ससर्ज, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि किए, कहां से आत्मन सकाशा अपने से सृष्टि किए। यह अंततः जीव और प्रकृति दोनों भगवान के ही अंश हैं, इसलिए आत्मना शब्द का प्रयोग अपने से बाहर निकाले। वही आवरण उपेतम हैंडम अंड कोशम से सर्च, सात बाहरी आवरणों से युक्त स्वर्ण जैसा गोल्डन चमकता हुआ ब्रह्मांड सृष्टि की। जाति के लिए एक वचन दिया गया है, अंड कोशम एक वचन है। इस प्रकार से अनंत कोटि अनंत अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि भगवान ने की अपने भीतर से। इसमें भगवान श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता सूचित की गई है और कारणोदक साय भगवान इनके विलास हैं, इनके अंश हैं जो इस विश्व की सृष्टि करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मानो कहे कि ननु एवं भूतम ईश्वरत्वम कुतो अवगतम, इस प्रकार की ईश्वरता का ज्ञान आप लोगों को कैसे हुआ, कैसे आप इस निर्णय पर पहुंचे कि मैं परम ईश्वर हूं, तो इसका उत्तर देते हैं। तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीश जन्मायोक्ष गुणवीक्रियोपनीतान् अर्थान् जुषन्नपि हृषि कपतेन लिप्त जिन्ने स्वतः परिहृतादपि विद्यते स्म। तत्तस्थुषः एक जगह स्थित रहने वाले स्थावर के और जगत जंगम के चलने वाले के भवान अभीषक, मन चार और अचर समस्त जीवों के आप अभीश्वर। जब क्योंकि जस्मात् मायोत्थ गुण विक्रिया माया के द्वारा उत्था उज्जृंभिता या गुण विक्रिया इंद्रिय वृत्ति तया उपनीतान अर्थान जुसन हे हृषिक पते न लिप्त त्वम ये अन्य ये तु अन्य जीवा जोगिनो वा स्वतः परिहृता अपि दिव्यति। भगवान की परमेश्वरता का निरूपण कर रहे हैं कि आप चर और अचर सबके अधीश्वर हैं, क्या अधीश्वरता है कि माया के गुणों के द्वारा जो उज्जृंभित गुण विक्रिया है मतलब इंद्रिय वृत्ति उसके द्वारा लाए हुए विषयों को आप भोगते हैं फिर भी लिप्त नहीं होते, यही ईश्वरता है। और जबकि आपके अतिरिक्त अन्य जीव या जोगी जन जो होते हैं वे परिहृतात् अपि दिव्यति, परिहृतात् का अर्थ है तिरस्कृत, त्यागा हुआ, दूर किया हुआ, उसे भी डरते हैं, अर्थात वासना मात्रेण बध्यंत। देखिए ईश्वर की ईश्वरताई, भगवान श्री कृष्ण की ईश्वरताई और जीवों की अमीश्वरताई, भगवान की माया से जन माया उत्थ गुण विक्रिया, भगवान की माया से इंद्रिय वृत्ति का जन्म होता है। इंद्रिय की वृत्ति और अर्थ दोनों भगवान उत्पन्न करते हैं, जैसे आंख भी भगवान देते हैं आंख में देखने की भावना, और आंख से जिन वस्तुओं को हम देखते हैं वो भी भगवान पैदा करते हैं। तो जो देखने की बात हुई इसको अक्ष वृत्ति कहेंगे, आंख की वृत्ति, कान की वृत्ति है सुनना ये सब, और शब्द की सृष्टि, इसी तरह स्पर्श की सृष्टि। तो भगवान की माया के द्वारा इंद्रियों की वृत्ति का जन्म होता है, वर्तन मतलब इंद्रियों में कार्य शक्ति आती है, क्षमता आती है, नहीं तो नहीं आ सकती। भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, या समस्त प्राणियों के भीतर परमात्मा रूप से स्थित हैं, इसलिए इंद्रियों में वृत्ति का उदय हो रहा है, दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, घ्राण शक्ति, इसको गुण विक्रिया कहते हैं। गुण का अर्थ है इंद्रियां और विक्रिया मतलब उनमें चेतना, ये प्रवृत्ति, कार्य क्षमता। तो गुण विक्रिया या इंद्रियों की वृत्ति के द्वारा उपनीता अर्थ, उपकार है अनुकूल भाव से, नीतान अर्थ जुसन न तिहसी पते न लिख, इस संसार में इंद्रियां हैं और इंद्रियों में प्रवृत्ति भगवान देते हैं और अर्थ भी भगवान देते हैं। यह देखा गया है कि भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, वही देखने सुनने सुनने की शक्ति भी देते हैं, अर्थ भी वही देते हैं, और उन अर्थों को जुसन नपी हे हृषिक पते पन्ना लिप्ता, उनको भोगते भोगने पर भी आप लिप्त नहीं है, अनादिकाल से आप हैं। कोई भी जीव यदि किसी इंद्रिय से किसी वस्तु को देख रहा है या अनुभव कर रहा है तो वास्तव में आप उसके साथ हैं, जूते गुणान सोडस साथ में कहो, अनंत कोटि जीवों के इंद्रिय प्रवृत्ति पर आप हैं और वस्तु भी आप बनाए हैं, प्रवृत्ति के भी कारण हैं, आप भोग रहे हैं समस्त वस्तुओं को, लेकिन फिर भी न लिप्त, आप इसमें लिप्त नहीं। लिप्त का अर्थ है कि आपके अंदर यह वासना नहीं आती है कि मैं भोगूं और भोग करके सुखी हो गया, ऐसी बात आपकी नहीं है, अनासक्त भाव से आप हैं। और जबकि दूसरे लोग अन्य जोगी या जीव परिहृतात् अपि दिव्यति, स्वयं जिन वस्तुओं को छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं, या परिहृत का अर्थ की शास्त्र द्वारा लोक द्वारा जो वस्तु गर्हित है सिद्ध की कर दी गई है, उन दूर पड़ी हुई वस्तुओं से भी डरते हैं। यहाँ डरने का अर्थ है, सुधर स्वामी करते हैं, वासना मात्रे बध्यंते किया, उनको अगर याद आ जाए उन वस्तुओं की तब भी बंध जाते हैं, और भगवान उसके भीतर रात दिन रहकर भी नहीं बंधते हैं। यह उनकी परमेश्वरता है। परिहृत विषय वो है, जैसे सन्यासी के लिए स्त्री आदि परिहृत, स्वतः परिहृत, स्वयं त्याग। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी को स्वयं त्याग देते हैं, लेकिन स्मरण करके भी बंध जाते हैं दूर से, स्मरण मात्र से आसक्त हो जाते हैं। साथ होने पर क्या होगा, क्या ऐसा है कोई जुसन नपी न लिपता, स्त्री आदि के साथ रह करके भी लिप्त न हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भगवान तो समस्त पुरुषों में है, समस्त स्त्रियों में है, कीट पतंग देवता दानव सब में है, और सबके इंद्रिय प्रवृत्ति को वही जागृत कर रहे हैं अपनी माया शक्ति द्वारा, विषय भी वही प्रदान कर रहे हैं, रात दिन वही लगे हुए हैं, भोगते हैं, लेकिन न लिप्त, लिप्त नहीं। लेप क्या है कि जो भगवान उससे लिप्त नहीं है, लेप का अर्थ है अज्ञान। लेप किसी चमकीले पदार्थ पर, जैसे दर्पण पर लेप चढ़ा दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो उसका जो सहज स्वरूप है उसमें जो कुछ दिखता है नहीं दिखे, इसको लेप कहते। तो जीव के भीतर ये वासना की भावना हो जाती है, मैं भोगता हूँ, यह मेरा है, ये है, मैं सुखी हो गया, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इस प्रकार की प्रवृत्ति भगवान में उत्पन्न नहीं होती, में लेप नहीं। नमाम कर्माणि लिंगन्ति नमे कर्म फले स्पृहाय एवं जो भी जानाति कर्म भिन्न सम्बन्ध। अच्छा, किस तरह से भगवान भोगते हैं विषयों को, इसलिए कि वे हृषिक पर इंद्रियों के पति हैं, पालक स्वामी, सबके इंद्रियों में जो भी प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति के मूल कारण भगवान है, परंतु वे इंद्रियों के नियामक हैं, अतः वे लिप्त नहीं। और दूसरे लोग त्यागी हुई वस्तुओं से भी भयभीत होते हैं। यह बिभ्यति स्म का अर्थ श्रीधर स्वामी जी करते हैं, वासना मात्रेण बध्यंत इत्यर्थ, डरते। यह परिहृता कपि का अर्थ है कि जो नहीं है परिहृत है, परिहृत का अर्थ है कि जिसे बहुत युक्तियों से देखा गया और पता लगा कि नहीं है, नहीं है मतलब माया का अर्थ ही होता है जो नहीं है, जो नहीं है वास्तव में, अथवा जो ये कहते रहते हैं नीति नीति या जगत मिथ्या है मिथ्या है, लेकिन फिर भी फंस जाते दूसरे लोग। तो भगवान तो कभी मिथ्या कहते नहीं है, सब में रमते हैं, सब कुछ भोगते हैं, फिर भी लिप्त नहीं होते हैं, और दूसरे वह स्मरण मात्र से लिप्त हो जाते, स्मरण मात्र से, या स्वतः त्यागी हुई वस्तुओं में भी लिप्त हो जाते। ऐसे इसका मोटा मोटा उदाहरण के लोक में देखा जाता है, कई लोग ऐसे संन्यास ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद फिर बचवा बबुआ आकर फिर अब कभी कभी अपनी स्त्री के पास अपनी भूल स्वीकार करते हैं कि बेकार मैं पागल हो गया संन्यास ले लिया। जो परिहृता परिहृत स्वतः, वो भी कोई सिखाया नहीं बताया नहीं, स्वतः जो छोड़ दिए ज्ञान होने पर कि नहीं ये माया है, ये है, वो है, लेकिन फिर भी बध्यंते, फिर भी बंध जाते। जिन वस्तुओं के साथ वास्तव में किसी का कोई संबंध नहीं है उन वस्तुओं से बंध जाते। भगवान का तो संबंध है, उन्हीं की माया से सब कुछ उत्पन्न किया गया है, और वे भक्ता के रूप में सब में हैं भी, अंतर्जामी परमात्मा के रूप में, लेकिन वे बंधते नहीं। और जिसका कुछ नहीं है वस्तुओं के साथ, जिसका कोई संबंध नहीं है, अच्छा जो संबंधाभास है उसको भी छोड़ चुका है, और फिर भी वासना मात्र से बंध जाते, फिर बंध जाते, ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है, हमारा है, ये अंतर है भगवान में और क्षीर या योगी प्रधान योगी। योगी लोग ही वास्तव में इस संसार को छोड़ते हैं, इसीलिए है योगिना ही अर्थ ठीक होगा। त्यक्ता विषय जोषणा वासना मात्रेण बध्यम, यही संस्पर्शजात होगा। दुख यो नएवते आद्यंत वंत कौंते न ते सुरमते बुधा, बुध उसमें रमते नहीं है, लेकिन भगवान के अलावा और कोई भी बुध वासना मात्र से बंध जाता है। संपर्क मात्र हो जाए तो क्या कहना, संपर्क हो जाने पर क्या होगा, केवल वासना मात्र से बंध जाता है। इंद्रियों को जीतना यही गोस्वामित्व है, स्वामित्व यही है वास्तव। जिस व्यक्ति की इंद्रियां ललायत नहीं है संसार को भोगने के लिए, वास्तव में वही ईश्वर है। उद्धव जी ने भगवान से एक प्रश्न किया है, क ईश्वर है, देखिए 19वां अध्याय क्या उत्तर आया है इसमें। क ईश्वर है, ईश्वर कौन है, उसमें उत्तर दिया गया। प्रश्न में आया है देखिए, तो उत्तर देखिए अंतिम उत्तर। हाँ देखिए, जिसकी गुणों में आसक्त बुद्धि नहीं है, जिसकी बुद्धि गुणों में आसक्त नहीं है, वही है ईश्वर। यहां से बिल्कुल अर्थ बैठ रहा है, गुणेशु असक्त भी ईश्वर। प्रकृति के पदार्थों में जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं है, वही है ईश्वर। यह भगवान की परमेश्वरता का निरूपण किया है। गुणों में है भगवान, प्रकृति के पदार्थों के भीतर है, सब कुछ है, इंद्रियों की प्रवृत्ति को भी वही जन्म देते हैं, लेकिन फिर भी आसक्त नहीं, लिप्त नहीं। और जीव वास्तव में देह से परे है, देह से तो परे है ही, देह के संबंधी अनुबंधी पदार्थों से भी वो सदा परे है, और स्वतः त्याग चुका है विवेक द्वारा, शास्त्र श्रवण द्वारा, सब कुछ हीन तरह से तुच्छ समझ करके, फिर भी स्मरण मात्र से उनमें बंध जाता है, लिप्त हो जाता है, ये उसकी अनिश्वरता है। और आप तो उसके बीच रह कर भी नहीं बनते, अलिप्तत्व न, उसी अलिप्तता का वर्णन कर रहे हैं देवगण, किस तरह भगवान श्री कृष्ण अलिप्त है, इसका वर्णन यहां किया जा रहा है। पहले लेप का वर्णन हम लोग समझ लें, लेप का अर्थ। इस संसार में ऐसे तो अनेक प्रकार के लेप हैं, उसको दाग कह सकते हैं, कालीमा। ये खास करके पुरुष के लिए, इस संसार में स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, यही सबसे भारी लेप है। कौन ऐसा व्यक्ति संसार में जन्म लिया होगा पुरुषों में जिसकी चित्तवृत्ति स्त्री में आसक्त न हुई होगी कभी न कभी। चित्तवृत्ति की बात मैं कह रहा हूं, चित्त उसका किसी स्त्री में न गया, ब्रह्मा शिव आदि से लेकर के अब तक के लोगों की बात की जा रही है। और कौन ऐसी स्त्री होगी जिसका चित्त किसी पुरुष में ना गया। लेकिन भगवान इतना निर्लिप्त है इस संसार में, अन्य विषयों की तो बात छोड़ दीजिए, अन्य विषयों में आसक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं, भगवान किसी भी स्त्री में आसक्त नहीं है। उनके मन में कभी स्वप्न में भी विकार आया ही नहीं, जबकि 16,000 उनकी पत्नियां हैं। दूसरे की स्त्री हो या मतलब परस्त्री हो तो उसमें हो सकता है किसी व्यक्ति का चित्त न जाए, शास्त्र के भय से, जमराज के भय से या लोक भय से, मन में हो सकता है विकार न, विचार करेगा रे शास्त्र इसको विकर्म कह रहा है, जमराज दंड देंगे अथवा लोक में स्त्री वाला दंड देगा, इससे हो सकता है उसके चित्त वृत्ति में क्षोभ आकर के भी क्षोभ ठंडा हो जाए, क्रियान्वित न होने पाए। लेकिन विवाह के द्वारा बिल्कुल वैध स्त्री जिसके पास हो और उसका चित्त स्वप्न में भी स्त्री में लिप्त न हो, भोगने की वासना न हो, क्या ऐसा संभव है? और वो भी 16,000 स्त्रियां, और केवल संख्या गिनाने के लिए ही नहीं, एक एक स्त्री इस विश्व में सबसे अधिक सुंदरी थी। सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्मा शिव आदि देवता कह रहे हैं भगवान की निर्लिप्तता का वर्णन। स्मायावलोक लव दर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंदही पत्न्यास्तु षोडश सहस्र मनंग वारही जस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन विभवः विभव्य। ननु अहम अत्र कामिव लक्ष्य नित्याः, क्रम संदर्भ में इस श्लोक के उपक्रम में जीव गोस्वामी कह रहे कि हे ब्रह्मा जी, हे भगवान शिव, भाई हम तो इस लोक में एक बहुत बड़े कामी के रूप में विख्यात हैं, और आप लोग कैसे कहते हैं कि मैं लिप्त नहीं? कोई एक दो स्त्री रखता है, मैं 16,000 स्त्री रखा हूं, और हमको आप लोग कह रहे हैं कि आप निर्लिप्त अनाशक्त हैं, कैसे? इसी को सिद्ध कर रहे हैं। स्मायाव लोक लव दर्शित हाथ भावहारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंद। स्माय अवलोक मंद स्मित विलसित अवलोक, स्मय का अर्थ होता है मुस्कान, स्माय का अर्थ होता है मुस्कान विलसित, स्माय का समय से स्माय शब्द बना हुआ है।